गीता एक महान धर्म काव्य है। इस ग्रंथ का जितना अधिक अभ्यास हम करते हैं उतने ही नए नए व सुंदर अर्थ पाते हैं। इस ग्रंथ की रचना लोक कल्याण की दृष्टि से हुई है, इसलिए एक ही चीज को कई प्रकार से बताया समझाया गया है। इसीलिए गीता के महाशब्दों के अर्थ हर युग में बदलेंगे तथा विस्तृत भी होंगे, परंतु गीता का मूल तत्व सार कभी नहीं बदलेगा। इस तत्व को पाने का हर एक जिज्ञासु का अपना अलग तरीका हो सकता है। वेद, उपनिषद तथा गीता, इन सब धर्म ग्रंथों का तात्पर्य एक ही है। विभिन्न संप्रदायों के विचारों का संगतकरण करके गीता उनके अभेद और एकता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। शाश्वत दर्शन के कभी भी रचे गए सबसे स्पष्ट और सबसे सर्वांग संपूर्ण सारांशों में से एक गीता है। इसीलिए न केवल भारतीयों के लिए अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए इसका बहुत अधिक व स्थायी मूल है। संभवतः भगवत गीता शाश्वत दर्शन का सबसे अच्छा सुसंगत आध्यात्मिक विवरण है। भारतीय दर्शन की प्रत्येक प्रणाली का सर्वोच्च आदर्श ये रहा है कि व्यक्ति बुद्धि से परे उठकर निश्चयात्मक अनुभव को प्राप्त करे। गीता भी इसी आदर्श तक पहुंचने की एक व्यावहारिक पद्धति प्रस्तुत करती है। वो उस आत्मिक जीवन की एकता पर जोर देती है जिसे दार्शनिक ज्ञान, भक्तिपूर्ण प्रेम या परिश्रमपूर्ण कर्म के रूप में बांटा नहीं जा सकता। गीता हमारे सन्मुख एक ऐसा धर्म प्रस्तुत करती है जिसके द्वारा कर्म के नियम से यानी कर्म और उसके फल की स्वाभाविक व्यवस्था से ऊपर उठा जा सकता है। कर्म की श्रृंखला या बंधन को यहीं और अभी इस अनुभवजन्य संसार में रहते हुए तोड़ा जा सकता है। निष्कामता और परमात्मा में अपनी श्रद्धा को पुष्ट करके हम कर्म के स्वामी बन जाते हैं। अंत में हमें ये पूर्ण आशा है कि जिस प्रकार भटके हुए और मोह से व्याकुल बने हुए अर्जुन को प्राचीन काल में भगवान के इस गीत ने सच्चा मार्ग बताया, उसी प्रकार आज भी भूले भटके और मोहित इंसानों का यही भगवत गीता सच्चा मार्गदर्शन कराएगी और हरेक के लिए उन्नत के पथ को खुला कर देगी। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा है कि हे जिज्ञासु, अन्य सर्व मान्यताओं का परित्याग करके एक मेरी शरण में आ, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त करूंगा, तू शोक करना छोड़ दे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
प्रणामाम्यहम्। लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योगी भेदान गम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरम्
करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्
आत्मानं रथिनं विद्धि
शरीरं रथमेव तु
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि
मन प्रग्रहमेव च
इन्द्रियाणि हयानाहु
विषयास्तेषु गोचर
भ्रमितं मधुरम् मधुराधिपते अखिलम् मधुरम् मधुराधिपते अखिलम् मधुरम्
मधुराधिपते
फलितं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
अध्याय पहला अर्जुन विषाद योग।
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय।
धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया?
दृष्ट्वा तु पांडवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यं उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्।
पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता।
अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराताश्च द्रुपदाश्च केतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः
युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः।
संजय ने कहा, उस समय पांडवों की सेना को अपनी व्यूह रचना में तैयार खड़ी देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर कहने लगे, हे द्रोणाचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने जिसकी व्यूह रचना की है, ऐसी इस विशाल पांडव सेना को आप देखिए। इस सेना में बड़े शूरवीर और धनुर्धारी भीम और अर्जुन जैसे योद्धा युयुधान विराट और महारथी द्रुपद धृष्ट केतु चेकितान पराक्रमी काशीराज साथ ही पुरुजित कुंतीभोज और मानवों में श्रेष्ठ शैव्य हैं। पराक्रमी युधामन्यु तथा उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं जो सभी बड़े महारथी हैं।
अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य स संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्माश्च कर्णाश्च कृपाश्च समितिं जयः अश्वत्थामा विकर्णाश्च सौमदत्ते तथैव च
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः
अपर्याप्तं तदस्माकं बलम् भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब अपनी सेना के प्रमुख नायकों के नाम भी आप जान लें। आप स्वयं भीष्म, कर्ण, रण में विजयी कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र। और भी अनेक योद्धा हैं जो मेरे लिए प्राण त्याग करने के लिए तत्पर हैं। भीष्म द्वारा रक्षित ये अपना सैन्य अपार है, जबकि भीम द्वारा रक्षित पांडव सैन्य सीमित है। अब आप सब वीर मिलकर सर्वे अयन या सेना व्यूह के द्वारों में अपने स्थान पर जमकर हर एक दिशा से भीष्म पितामह की ही रक्षा करें।
तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पिता नादं विनत्योच्चै शङ्खं दध्मौ प्रतापवान्
ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलो भवत्।
उसे आनंदित करने के लिए प्रतापी तथा वयोवृद्ध कुरु योद्धा भीष्म पितामह ने सिंह की भांति गर्जना की और अपना शंख ऊंचे स्वर में बजाया। इसके बाद अनेक शंख, भेरियां, ढोल, नगाड़े और गोमुख सहसा बजने लगे। इन सब की ध्वनि बड़ी प्रचंड हुई।
ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यम् ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा भृकोदरः
अनन्तविजयं राजा कुन्ती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ।
इसके बाद अपने श्वेत अश्व वाले विशाल रथ में बैठे हुए कृष्ण तथा अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांच जन्य, अर्जुन ने देवदत्त और महापराक्रमी भीम ने अपना महान पौंड्र शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष तथा सहदेव ने मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए।
काश्यश्च परमेश्वासा श्रीखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथिवीपते सौभद्रश्च महामाहु शङ्खान् दध्मो पृथक् पृथक्
सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्।
अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपित्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुत्यम्यपाण्डवः।
महान धनुष्यधारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के सभी पुत्रों ने तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र अभिमन्यु ने अपने अपने शंख बजाए। इस तुमुल शंखनाद से पृथ्वी व आकाश गूंजने लगे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय भय से विदीर्ण होने लगे। तब जिसकी ध्वजा पर हनुमान की मूर्ति अंकित थी, ऐसे अर्जुन ने कौरवों को उत्तम व्यवस्था पूर्वक खड़े देखकर तथा शस्त्रों के चलाने का समय होने पर अपना धनुष उठाया।
ऋषिकेशं तदा वाक्यमिद
यावदेतान् निरीक्षेहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह
योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे
और हे राजा, तब उसने ऋषिकेश कृष्ण से ये शब्द कहे, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए, जिससे मैं उन लोगों को देख सकूं जो युद्ध के लिए उत्सुक खड़े हैं और जिनके साथ मुझे युद्ध लड़ना है। मैं उन सबको देखना चाहता हूं जो दुष्ट बुद्धि वाले दुर्योधन का इस युद्ध में भला करने के लिए एकत्रित हुए हैं।
एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्।
भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिता उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति।
संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने भीष्म, द्रोण और सब राजाओं के सन्मुख खड़े होकर कहा कि हे पार्थ, इन सब इकट्ठे खड़े हुए कुरुओं को देखो।
तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पिता महान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा
श्वशुरान् सुहृदाश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य सकौन्तेया सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। कृपया परयापेष्टो विषीदन् निदमब्रवी
दृष्ट्वे मम स्वजनम् कृष्ण युयुत्सुम् समुपस्थितम्।
इस पर अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने ही पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों तथा मित्रों को खड़े देखा। दोनों सेनाओं में श्वसुर मित्र बंधु भी खड़े थे। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने इन सबको इस प्रकार खड़े देखा तो उसका कोमल हृदय भर आया और वो उदास तथा अत्यंत करुणापूर्ण मन से कहने लगा, हे कृष्ण, अपने लोगों को अपने ही सामने युद्ध के लिए अधीर खड़े देखकर मेरे गात्र शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये गांडीव धनुष भी मेरे हाथों से फिसला जा रहा है और मेरी त्वचा में जलन हो रही है। मैं अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता और मेरा मन चकरा सा जा रहा है।
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे।
हे केशव, अब मुझे सब विपरीत चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। अपने ही संबंधियों को इस युद्ध में मारने से मुझे कोई भलाई होती नजर नहीं आती।
न कांक्षे विजयम् कृष्ण न च राज्यम् सुखानि च
शामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ते इमे वस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च
आचार्या पितरा पुत्रा तथैव च पितामह मातुलाः श्वशुरा
हे कृष्ण, नहीं मुझे विजय चाहिए, न राज्य, न ही कोई सुख। हे गोविंद, हमें राज्य से, सुख भोग से, यहां तक कि जीवित रहकर भी क्या करना है? जिन लोगों के लिए हम ये सब राज्य, भोग और सुख चाहते थे, वे ही सब गुरु, पिता, पुत्र और दादा, मामा, श्वसुर, पौत्र, साले तथा अन्य संबंधी अपने प्राणों तथा धन मोह को त्याग कर यहां युद्ध में आ खड़े हैं।
हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः
तस्मान्नार्हाः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव।
हे मधुसूदन, चाहे वे ही मुझे क्यों न मारने लगें, लेकिन त्रिलोक के राज्य के लिए भी मैं उन्हें मारने को तैयार नहीं हूं। फिर इस पृथ्वीलोक के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमारा क्या भला होगा? इन दुष्ट आततायियों को मारने से तो हमें ही पाप लगेगा। इसलिए इन संबंधी कौरवों को मारना हमारे लिए योग्य नहीं है। हे माधव, हमारे ही बंधुओं को मारकर हम किस प्रकार सुख पा सकते हैं?
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्।
कथं नग्नेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन।
यद्यपि ये लोग लोभ से भ्रष्ट चित्त होने के कारण परिवार के विनाश की बुराई और मित्र दोह के पापों को नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी हे जनार्दन, हम तो कुल के विनाश का दोष अच्छी तरह जानते हैं, और इस पाप से अलग रहने का विचार हमें क्यों न करना चाहिए?
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलं क्रोत्स्नम् अधर्मो भिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टा
संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः।
दोषैरेतै कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः।
कुल के क्षय से सनातन कुल धर्म जो परंपरा से चला आता है वो नष्ट हो जाता है, और कुल धर्म के नष्ट होने से पूरे ही परिवार पर अधर्म का प्रभाव पड़ता है। हे कृष्ण, जब अधर्म पूरे कुल में व्याप्त हो जाता है तो कुल की स्त्रियों में दुराचार प्रवृत्त होता है। जब स्त्रियां दोषयुक्त हो जाती हैं तभी विभिन्न जातियों का दोषित सम्मिश्रण पैदा हो जाता है। हे वार्ष्णेय कृष्ण, वर्ण संकर के कारण कुलघात के पुरुष पैदा होते हैं और सारा ही कुल नरक में पहुंच जाता है। साथ ही पिंड प्रदान तथा जल तर्पण आदि धार्मिक संस्कार लुप्त होने से पितरों का भी पतन होता है। कुल घातकियों के इस वर्ण संकर दोषों के कारण जाति धर्म व कुल धर्म का भी नाश हो जाता है।
उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम।
अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् यत्राद्यसु खलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। यदि माम प्रतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्र रणे हन्यो तन्मे क्षेमतरं भवे।
हे जनार्दन, जिसके कुल धर्म का विनाश होता है ऐसे मनुष्यों का अवश्य ही नरक में निवास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। ओह, कितना बड़ा पाप करने का हमने निश्चय किया है कि राज्य सुख की लालसा से हम हमारे ही भाइयों की हत्या करने पर तुले हैं। इससे तो यही अधिक कल्याणकारी होगा कि ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे बिना शस्त्र उठाए या विरोध किए ही मुझे रण क्षेत्र में मार डालें।
एवमुक्त्वा अर्जुनः संखे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः।
इस प्रकार रणभूमि में अपना वक्तव्य कहकर शोक से व्याकुल चित्त होकर अर्जुन ने धनुष व बाण छोड़ दिए और अपने रथ में बैठ गया। इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः।
अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो शिवोहं शिवोहं चिदानन्दरूपं शिवोहं शिवोहं न च प्राणसन्ने न वै पञ्चवायुः न वा सप् धातुर्नवापञ्चकोश नवाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्द
शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा समत्वं न मुक्तिं न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं